ओम शांति। प्रभु प्यार में पल रहे हैं। कैसे बताओ?
पढ़ाई की पालना।
और राजीव, प्रभु प्यार क्या, एक तो सुना दो। प्यार में क्या करता है बाबा? सवेरे सवेरे उठाता है और माजून खिला देता है। बाबा कहा करते थे सरकार में। और प्रभु प्यार किसे मिलता है? माताएं बताएंगे जरा। सच्चाई, सफाई और बोलो, याद में रहते और बोलो। आप सब जानते हैं, आपको मिल रहा है या नहीं? जो उनको प्यार करते हैं उनको बहुत प्यार मिलता है। और बोलो, श्री मत छोड़ो, उसमें तो सब आ गया ना, तो फाइनल उत्तर है जो जितने देह से न्यारे उतने ही बाबा के प्यारे। वो सब भी उत्तर हैं। आज्ञाकारी बच्चों को तो लौकिक माँ बाप भी बहुत प्यार करेंगे। पढ़ाई में बच्चा बहुत होशियार हो और मान लो घर में पैसे ना हो तो कुछ करके भी पढ़ाएंगे उसे। बाबा साकार में भी एक प्रश्न पूछा करते थे, मैं भी पूछ लेता हूँ वही, बाबा हमें ज्यादा प्यार करता है या हम बाबा को? सबका एक ही उत्तर, क्यों? क्यों? हाँ, पहले उसने ही प्यार किया है, उन्होंने ढूंढा, हमारा हाथ पकड़ा, हमें स्वीकार किया है। मैं जैसे थे स्वीकार कर लिया। वैसे भी लौकिक में भी माँ बाप ही बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं ना। बच्चों का तो प्यार पहले पढ़ाई से हो गया, फिर फ्रेंड से हो गया, बटा रहता है मनुष्य आत्माओं का भी प्यार। और उसका प्यार, वो वैसे भी प्यार का सागर है, अगर बट भी जाए 10-20 लाख में तो भी अथाह है वो सागर के पानी को अगर मार दो सारी दुनिया में तो भी एक एक के पास नदियां हो जाएंगी। तो सागर है निर्मल, अनकंडीशनल कहते हैं इंग्लिश में, सबको प्यार करता है। कंडीशन नहीं, ये कंडीशन भी हैं, जो सच्चे सच्चे हैं वो बाबा को बहुत प्रिय हैं, जो सुख देने वाले हैं वो उसे बहुत प्रिय हैं। ये भी सब है जो आप सबने सुनाया, परंतु पवित्र आत्माओं पर उसका प्यार बहुत ज्यादा रहता है। और एक बात हम सभी को पता रहे कि जिसने अब उसके प्यार को जीत लिया, अधिकारी बन गए, जन्म जन्म भी उनको उसका प्यार मिलता रहेगा, क्योंकि द्वापर युग से भी हमें उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, भिन्न भिन्न जगह पर जरूरत पड़ेगी। किसी ने उसकी दृष्टि को खींच लिया है तो उसकी नजर रहेगी द्वापर युग से भी ऐसी महान आत्माओं पर, उसके काम आएंगे, उसके देश के काम आएंगे, धर्म के काम आएंगे, अनेक मनुष्यों के काम आएंगे, क्योंकि सभी उसके बच्चे हैं ना। वो ये नहीं चाहता कि बहुत दुखी हों, तो ऐसी आत्माएं जो सबके दुख मिटाने लगी उन पर उसका बहुत प्यार रहता है। देखो, कोई कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं, अब भी हैं कलयुग के अंत में, ज्यादा फीस नहीं लेते, उनके पास भीड़ रहती है पेशेंट की, ज्यादा फीस लेने वालों के पास 10 आएंगे रोज और उनके पास 200-500 तक आ जाते हैं और 10-10 रुपए ले रहे हैं बस, और लोगों को बिल्कुल आराम मिल रहा है। क्यों मिलता है आराम? उनमें लोगों की भावना रहती है बहुत, और जो बहुत फीस ले रहा है उसमें पहला ही संकल्प है कि बहुत ले रहा है, पहला ही निगेटिव संकल्प होगा। आधे मन से देंगे ना, तो ऐसा व्यक्ति जो बहुतों की सेवा कर रहा है, बहुतों को सुख मिल रहा है, उस पर भी भगवान का प्यार आता है लौकिक भक्ति में भी। इसलिए जो बहुत पुण्य आत्माएं हैं वो भी उसको अति प्रिय हैं, चाहे वो भक्ति में हो ज्ञान में न भी हो। तो हम सभी प्रभु पालना में पल रहे हैं, प्यार में पल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारे प्यार में वो हमारे लिए क्या क्या कर देता होगा, करता होगा या नहीं। हम अंधेरे में जा रहे हैं, रास्ते में सांप लेटा हुआ है, हमें पता नहीं, उसने देख लिया है कि ये जा रहे हैं, सांप जहरीला लेटा हुआ है, अब वो कुछ ऐसा कर देता है कि सांप चलने लगता है, खिसक जाता है, हमें पता नहीं चलता कि उसने हमें कुछ मदद की है, लेकिन वो बहुत कुछ करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, एक टाइम पर, टाइम का बड़ा महत्व होता है ना, कोई कार में जा रहे हैं 10:05 पर उनका इस जगह एक्सीडेंट होना निश्चित है, बाबा कुछ ऐसा कर देता है कि उन्हें 10 लेट करा देता है, वो इधर परेशान होंगे, ड्राइवर नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ भाग गया, चाबी खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, 10 पास करा दिया, वो टाइम पास हो गया, वो जगह पास हो गई, सेफ हो गए, मनुष्य को पता नहीं चलेगा कि बाबा की क्या मदद हुई। वो बहुत मदद कर रहे हैं हमें अपने प्यार में, और विनाश काल में तो बहुत करेंगे। बाबा ने कहा है जो बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा के लिए बहुत कुछ किया है, उनको बाबा कुछ होने ही नहीं देगा। कभी कभी तो कहा तुम पहाड़ियों पे बैठ के विनाश को देखते रहोगे, इधर तक कुछ आएगा ही नहीं। कभी कहा बाबा तुम्हें साक्षात्कार में इतना बिजी कर देगा कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, कब विनाश हो गया उसका पता ही नहीं चलेगा। तो ये प्रभु प्रेम की पालना होगी। अब सोचना ये है कि वो तो हमें बहुत प्यार कर रहा है, लेकिन करते तो हम भी हैं, पर हम उसके प्यार में क्या कर रहे हैं। प्यार तो सब करते हैं, पर उसके प्यार में हम कर क्या रहे हैं, क्या क्या कर लेना चाहिए उसके प्यार में। नहीं, श्री मत छोड़ो, वो मैंने कहा ना, उसके प्यार में क्या कर देना चाहिए। हाँ, और क्या क्या है वो महान कर्तव्य। आपने ये बात कही तो मुझे एक बाबा की बड़ी गहरी सुंदर बात याद आ गई, मुश्किल ही किसी ने सुनी होगी वो, पर अव्यक्त मुरली से है। ब्राह्मण पन के कर्तव्य पूर्ण किए बिना तुम घर नहीं जा सकोगे। कल भी था ना ऐसा ही स्लोगन, जो ब्राह्मण कल्चर से प्यार करते हैं वही। तो बहुत ही अच्छी बातें हैं ये, ब्राह्मणपन के कर्तव्य। हमें सबका उद्धार भी करना है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान भी देना है। अभी तो कुछ ऐसे कार्य रहे हुए हैं जिनका बहुतों को पता भी नहीं है, और जिन्होंने अच्छी स्थिति बनाई होगी उनके द्वारा बाबा वो महान कार्य कराएंगे। होगा ऊपर से, रिमोट कंट्रोल ऊपर होगा, पर जिन्होंने स्थिति अच्छी बनाई है, जैसे जो बाप समान बने होंगे, क्या बन जाएंगे वो। वो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अभी साक्षात्कार वो नहीं कराएंगे, लेकिन उनके द्वारा बाबा कराता रहेगा, लेकिन कराएगा उससे ना जो योग्य होंगे। ऐसे ही किसी को देवी बना के खड़ा कर दे, और देवी को आंसू आने लगे तो लोग कहेंगे गड़बड़ हो गई भाई, कोई और आ गई, देवी नहीं आई, ये तो कुछ और है। तो जो अपनी स्थिति को वैसा बनाएंगे उनके द्वारा आने वाले समय में महान कार्य होंगे। तो जरा सोचें, हमें जिससे बहुत प्यार है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? सोचो, दो चार बात बता दो, क्या करना चाहिए? हाँ, पहला काम तो आप सबने कर दिया है, मधुबन वालों ने, उसके प्यार में सर्वस्व समर्पित, पहला प्यार। दूसरा प्यार, हाँ शांति ना बोलो, अब दूसरा प्यार बताओ, बोलो दूसरा प्यार। आपको कौन सा प्यार है? बाबा से। दूसरा, बाबा ने जो मुख्य बात कही है उसको पूर्ण करने के लिए 200 नाखूनों का जोड़ लगा देना। दूसरा, उसके प्यार की ये पहचान है। और बोलो, यज्ञ सेवा में कुर्बानी कर देना। ये नहीं यज्ञ सेवा की विशेष जरूरत पड़े तो कह दे हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो सकता, ये प्यार है ही नहीं। धन भी यज्ञ सेवा में लगाना हो तो सोचने लगे, थोड़ा सा लगाएंगे, दूसरे भी तो करने वाले हैं, सारा हम ही कर देंगे तो दूसरों का मौका कहाँ मिलेगा, सोचते हैं ना बहुत लोग, हमारे तो बच्चे भी हैं, इतना सब कुछ करना पर थोड़ा ही हम कर सकते हैं, बच्चों को बाबा ने ही तो कहा बच्चों को भी संभालो। लेकिन हम सभी बाबा के प्यार में कुर्बानी की भावना रखें, कुर्बानी की भावना। बाबा के प्यार में ही बहुतों ने मारे खा ली हैं, खाई हैं या नहीं? माताओं ने ज्यादा खाई हैं, खाई हैं? भूख पूरी हुई या नहीं? खाया है बहुत, मारे खाई हैं, सहन किया है, गालियां खाई हैं, किस लिए? बाबा के प्यार में। और कोई ये सोचने लगे अच्छा बाबा मिला, मुसीबत ही हो गई। जो जिनको प्यार है वो ये सब कुछ नहीं सोचते, उन्हें पता है भगवान के प्यार में कष्टों को पार करना ही पड़ता है। करना पड़ता है या नहीं? बहुत कुछ सुना, गालियां खाई, सहन किया और चले, कोई रोक नहीं पाया, है ना, बहने बैठी हैं, शादियों को भी ठुकरा दिया कन्याओं ने, बाबा का बनना है, दुश्मन होने हैं हो जाओ, परिवार वाले कुछ भी करना चाहते हैं करो, हम तो चले प्रभु की तरफ। किया है नहीं? तुम लोगों ने भी किया ना, तो ये प्रभु प्यार है। और जो ये सोचते हैं कैसे चलेंगे, पता नहीं कल कुछ हो जाए, अकेले चलना बड़ा मुश्किल, सेंटरों पे भी नहीं रह सकते, बड़ा सहन करना पड़ेगा, काम भी बहुत करना पड़ता है, उधर माँ बाप भी जोर दे रहे हैं शादी करो, छोड़ो कर ही लेते हैं फिर चलेंगे ज्ञान में, ऐसे भी बहुत हैं, तो वो प्रभु प्रेम नहीं है। प्रभु प्रेम, प्रभु प्रेम हो रहा है, प्रभु प्रेम। अब सोचेंगे सभी, हाँ बाबा कहे सवेरे उठकर मेरे से बुद्धि योग लगाए लगाओ, और हम कहें नींद से बहुत प्यार है, तो नींद से प्यार तो प्रभु प्यार नहीं होगा या नहीं? बाबा कहे रोज मुरली सुनने आओ और हम बहाना बना दें कि नहीं व्हाट्सएप पे भी तो आती है, इसमें पीस ऑफ माइंड में भी तो आती है, ठंड बहुत है क्या करेंगे वहां जाके, वही तो बातें इधर ही सुन ली, कोई बात नहीं, तो प्यार है या नहीं? ये मुरली से तो चलो प्यार है, लेकिन प्रभु प्यार कम है, ठंड से प्यार ज्यादा है, ठंड से नफरत है, प्यार तो नहीं कहेंगे अभी जरा सा विचार करेंगे, हमें अपने पुरुषार्थ को महान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब तुम मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मेरा बाबा बोलो, बोलो मेरा बाबा बोलो ना। अरे इससे बुलवा रहा हूँ। अच्छा बोलो, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जिन्हें बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। समय नष्ट नहीं करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। समय बहुत बड़ा खजाना है। इस समय पे जो किया जा सकता है वो चारों युग में कभी नहीं, और जो अब चूक गया पश्चाताप को उसने निमंत्रण दे दिया। कल्प कल्प तो चूक ही जाएंगे, पर जन्म जन्म अधूरापन, खालीपन, असफलता, विघ्नों से भरा जीवन महसूस होता रहेगा। तो समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। जिन्हें मन चाहा पुरुषार्थ करना है, माताएं बहुत आती है मेरे पास। आज भी ग्रुप आया था, चार चल दी मेरे साथ साथ, कह रही और भी माताएं हैं उन्हें बुला ले। मैंने कहा चार ही बहुत हो, खाना खा लिया था, मुझे पैदल अपने कमरे तक जाना था। क्या योग नहीं लगता भाई जी, क्या करें बताओ, योग नहीं लगता। अब उस पांच मिनट के रास्ते में ही मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ मुझे किन माताओं का योग नहीं लगता। माताओं के लिए मैंने पूछा तो चार पांच बातें उन्होंने फटाफट बता दी जो बातों में बहुत रहती हैं। मैंने कहा रहती हो क्या, कि हाँ रहती है। तो हंसने लगी, बातों में बहुत रहती हैं, तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। योग होगा ही नहीं, बुद्धि फिर उनमें चलेगी ना। फिर मैंने पूछा जब योग में बैठोगी तो वो बातें भूलती हैं याद रहती हैं, भूल जाती होंगी ना आपको तो। कहाँ भूलती हैं, वही चलती रहती हैं। उसने ये कहा था, देखो उसने ये कहा था, चार पांच बातें बता दी उन्होंने। मोह ममता बहुत माताओं में है, उलझी रहती हैं परिवारों में, योग नहीं लगता। तो मैंने कहा उलझनों से बाहर आ सकती हो, आना तो चाहती हैं पर आया नहीं जाता। क्या कहेंगी माताएं, उलझनों से बाहर आ सकते हैं। गर्दन नहीं ठीक से हिल रही, सोच रहे हैं बड़ा भारी काम है। तो एक ही बात जो मैंने उन्हें कही कि जिसको योगी बनने की दृढ़ इच्छा हो उसे कोई नहीं रोक सकता है। माताएं ऐसी बहुत अच्छा योग, कन्याएं भी हैं ऐसी बहुत अच्छा योग, कोई बंधन नहीं, कोई बाधा उनको रोक नहीं सकती। लक्ष्य बहुत दृढ़ होना चाहिए। तो जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें ईगो में नहीं आना चाहिए, व्यर्थ में नहीं रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, व्यर्थ बहुत है संसार में, सागर है व्यर्थ का भी। रात दिन लगे रहो, अंतिम घड़ियों तक चलता रहेगा। इसलिए जिसको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, अटेंशन, उसको और कुछ नहीं देखना चाहिए। समझ गए ना इस बात को, कुछ भी नहीं। कहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल ओपनली, शंकरों में क्या हो रहा है, यज्ञ में क्या हो रहा है, इस ये कौन क्या कर रहे, ये बड़े क्या कर रहे, आंखें बंद। अगर आंखें बंद करनी सीख ली तो तीसरा नेत्र पूरी तरह खुला रहेगा और वो देखेंगे जो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन जो दो आंखें खोल के देखते रहेंगे, ये ऐसा कर रहे, ये ऐसा कर रहे, क्यों कर रहे, इन्हें नहीं करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या हो गया इन सबको, तीसरा नेत्र बंद। क्लियर है ना बात, और ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे इसका, आप जानते हैं। तो देखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलयुग में कुछ भी होता है तो हमें पता ये कलयुग का अंत है। विनाश का समय है, अब बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ब्राह्मणों के बीच होता है तो संकल्प तेज चलने लगते हैं। लेकिन अपने में विश्वास, भविष्य में विश्वास, अपनी शक्तियों में विश्वास और इस ड्रामा को ठीक से जानने वाले विचलित नहीं होते। ड्रामा को ठीक से जानना है। परीक्षाएं तो सबको देनी पड़ती है ना, हमने पढ़ाई पढ़ी है, किसने 10 साल, किसने 20 साल, किसने 50 साल, किसने उससे भी ज्यादा, तो परीक्षाएं देंगे या नहीं? जितना बड़ा एग्जाम, जितना बड़ा पद, उतना बड़ा एग्जाम। पेपर कठिन आएंगे या बिल्कुल सरल आएंगे? जो आईएएस कर रहे हैं उनके पेपर में कठिन से कठिन बुद्धि की परीक्षा होती है। वो सोचें कि हम कलेक्टर तो बने लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल आए, होगा? तो यज्ञ में भी ये परीक्षाओं का दौर चल रहा है। सबने जो पढ़ाई की उसके पेपर लिए जा रहे हैं, कौन कितने नंबर लेते हैं वो यही हो रहा है, और इसके बाद होगी रिजल्ट आउट, किसने क्या किया है, किसने कितने नंबर लिए हैं। इसलिए समय की सूक्ष्मता को पहचानते हुए अपनी स्थिति को महान बनाना है। महान साक्षी दृष्टा, बहुत पावरफुल, ताकि माया के इस युद्ध में हम सहज भाव से विजयी होते रहें। बाबा जो कुछ मुरलियों में कहते रहे अव्यक्त में, वो सब अब साकार होने लगा है, प्रत्यक्ष होने लगा है। जो ज्ञान में नए हैं, 2-4 साल वाले भी ज्ञान में बहुत भाई बहने आ गए हैं, समझो 5 साल के अंदर अंदर भी लाखों आ गए हैं, कई लाख आ गए हैं। पुराने थोड़े पीछे चले गए हैं, लेकिन नए बहुत आए हैं जो अति उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हैं, जिनके मन में कुछ पाने की एक ललक रहती है कि बाबा के पास आए हैं, उनके पास ये संकल्प भी बड़ा पावरफुल है कि लास्ट में आए हैं, इन्होंने तो बहुत माल ले लिया होगा, हम ही पीछे रह गए, अब कुछ करना है, भले ही पीछे वालों ने लिया हो या न लिया हो, पर उन्हें लगता है कि बहुत ले लिया इन्होंने तो, अरे ये 30 साल से, ये 20 साल से, हम 2 साल से कुछ कर लो, तो दृढ़ता से तेज पुरुषार्थ करते, ये अच्छी बात है ना, दृढ़ता से तेज, ये देखने का नजरिया है ना। वो ये सोचने लगे ये 30 साल वाले भी ढीले डाले ही हैं, तो सोचेंगे हमें रिले होने में क्या तकलीफ है, देखते हैं ना ऐसे भी, ये 30 साल वाला भी योग में सो गया है आके, हम भी सो गए तो क्या फर्क पड़ता है, इसे तो बिस्तर में ही सोए रहे हैं, वो क्लास में जाके सोया, हम रजाई में सोए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना दोनों, देखने का एटीट्यूड। लेकिन उमंग यही रहनी चाहिए, हम लोगों को भी उमंग रहती थी, जब बाबा व्यक्त हुए तो 33 ईयर्स हो गए थे, दादियां बहुत आती थी मधुबन में, अनुभव सुनाया करती थी, तो हम सोचते थे इनके 28-30 साल के बाद हम आए हैं ज्ञान में, हम बहुत पीछे रह गए भी, इन्होंने तो बहुत कुछ ले लिया है, हमें तेज पुरुषार्थ करना है, तो उससे एक बहुत अच्छी लगन बनी, उसे एक बहुत अच्छा पुरुषार्थ हो गया। और जब मनुष्य की लगन तेज होती है, लगन देखो आप, आपको स्टेशन पे जाना है, घड़ी में 10 मिनट बचे हैं, 10 ही मिनट हैं आपके पास, 10 मिनट में ट्रेन आएगी, आपने पता कर लिया ट्रेन राइट टाइम पे है और वहां 3 मिनट ही रुकेगी बस, तो आप कैसा चलेंगे कि 10 मिनट के रास्ते को 8 मिनट में तो पूरा कर दें, इधर उधर क्या हो रहा देखेंगे? कोई नहीं देखेगा। किसी मंजिल पर जब मनुष्य को पहुंचने की लगन होती है तो वो इधर उधर बिल्कुल नहीं देखते। इसी लगन की हमें भी बहुत जरूरत है। अब समय की यही मांग है कि बहुत अच्छा लक्ष्य बनाकर जीवन का लक्ष्य कर्मातीत होना, फरिश्ता बनना, ये नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, ये तो फाइनल है। हमें संपूर्ण बनना है, कर्मातीत होना, बाप समान होना है, लेकिन इस लक्ष्य को याद करके कुछ मजा नहीं आता। यह आता है, एक लगन नहीं, लगन की अग्नि नहीं उठती। देखो, किसी को बता दिया गया बीमार है व्यक्ति, बहुत रोज आते हैं हमारे पास, तो दो चार केस ऐसे, बहुत बीमार है मेरा पापा, वही कमाने वाला है, अगर वो चला गया तो हम सब बेकार हो जाएंगे। परसों की बात है, हमने उसको कहा योग करना आपको 4 घंटे रोज इनके लिए, बिल्कुल 4 क्या आप कहो तो हम 8 भी करेंगे, माँ और बेटी दोनों। मैंने कहा नहीं, 4 ही कर लो बस। 4 घंटे शुरू किया, तीसरा दिन था स्थिति में सुधार आने लगा। डॉक्टरों ने तो कह दिया था ब्रेन में कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, ऑपरेशन हुआ, नीचे का हिस्सा डेड हो गया, पैर दोनों, कमर से नीचे का हिस्सा डेड, उसमें खून बह ही नहीं रहा, सेंसेशन नहीं रहा, लेकिन सुधार होने लगा। तो लगन लग गई ना, नहीं तो एक ऐसे व्यक्ति को हम कहे 4 घंटे योग करना, वो कहेंगे कहाँ टाइम है, योग लगता ही नहीं भाई जी, कहाँ योग करेंगे, हमसे नहीं होता, नींद आती, अनेक बहाने हैं। लेकिन एक लक्ष्य था, पापा को ठीक करना है, आयु भी ज्यादा नहीं है, तो बहुत लगन से योग अभ्यास शुरू किया। हम भी अपना कुछ लक्ष्य बनाए, 1 साल में मुझे ये कर लेना है। अपनी कोई विशेष कमी देख लो, जो आपको कष्ट दे रही हो, जो दूसरों को कष्ट दे रही हो, जो आपका मार्ग रोक रही हो, जो आपकी शक्तियों को खा रही हो, इसे भरना है मुझे 1 साल के अंदर, भर जाएगी, 6 मास में ही भर जाएगी। मान लो किसी में दुखी रहने का संस्कार है, बाबा ने कहा न दुख दो न दुख लो, अब दुख देना तो छोड़ दिया, बहुत संभल गए बहुत आत्माएं कि हमारे द्वारा किसी को दुख न हो, लेकिन लेने की बात जब आती है तो बहुत आत्माएं दुख ले लेती हैं, किसी ने कुछ कहा दुखी हो गए, जरा सी तबीयत बिगड़ी बहुत दुखी हो गए, कहीं सफलता नहीं मिली बहुत दुखी हो गए, कहीं अपने व्यक्ति को कुछ हो गया तो सारा दुख खुद में आ गया। लेकिन इससे मुझे पार होना है। मान लो आप एक लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे 6 मास में यही अभ्यास करने हैं, ताकि किसी भी दुख में मैं दुखी न हूं, तब तो मैं दूसरों के दुख हर सकूंगी ना। अगर हम दुखी होते रहे तो दूसरों के दुख हरता हम नहीं बन पाएंगे। तो आप मेहनत करेंगे, अच्छे 2-4 पॉइंट रखेंगे, ये चिंतन करना है, ऐसे ऐसे शरीरी होना है, ऐसे ऐसे बाबा को अपने साथ रखना है, तो बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। होगी या नहीं? ऐसे ही कोई भी संस्कार को बदलना, कोई भी विशेष चीज को अपने जीवन में लाना, या अपना योग का चार्ट बढ़ाना, या अपने को पावरफुल करना। देखो, किसी किसी में एक छोटी सी कमजोरी होती है, वो है तो बड़ी पर है बहुत छोटी सी, उन्हें बहुत बड़ी लगती है कि किसी बात करने में डर लगता है, हिचक होती है, कहीं भी एक डर लगता है मनुष्य से बात करने में, उनसे मिलने में, उन्हें ज्ञान देने में भी डर लगता है, पता नहीं ये क्या कहेंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अभी छोटी सी कमजोरी के लिए आप लक्ष्य बना लें कि मुझे इसको 3 मास में खत्म करना है, यथार्थ विधि अपनाएं तो 3 मास में वो कमजोरी खत्म हो जाएगी। ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए। इसलिए अच्छा पुरुषार्थी वही है जो अपनी कमियों को भी जानता हो और अपने खूबियों को भी, दोनों को जानना जरूरी है। कई लोग केवल अपनी कमियों को जानते हैं, अच्छी बात है कमियों को पहचानना, उसको रियलाइज करना, भाई मेरे में ये कमी है, मुझे गुस्सा आता है और ये गलत है, मुझे छोड़ना है। ये रियलाइजेशन एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। लेकिन गुस्सा करते हुए भी लोग सोचे, क्या सोचते हैं गुस्सा करने वाले, हैं? काम नहीं चलेगा इसके बिना, और करना ही पड़ेगा, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, आगे बोलो, दिलाया जाता है। हाँ ये भी ठीक, बाबा की एक मुरली थी ना याद हो आपको, कई बच्चे कहते हैं मुझे गुस्सा आता नहीं, दिलाया जाता है। इन्होंने भी कहा, कई सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं, मेरा बोलने का तरीका आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूं, तो मुझे गुस्सा आता नहीं, दिलाया जाता है, तो बड़े कौन हो गए, दिलाने वाले हम हो गए कमजोर। लेकिन बनना है हमें पावरफुल, लक्ष्य बना लें कि लोग गुस्सा दिलाएं, लोग ऐसे काम करें हमारी न माने, लेकिन मुझे चित्त को शांत रखना, एक साल में ये स्थिति बना लेनी है तो अवश्य बन जाएगी। ऐसे दृढ़ संकल्प, ऐसे दृढ़ता पूर्वक अच्छे लक्ष्य बनाने वाले हमेशा अच्छे पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। और सोचो, जिन मन चाहा अच्छा पुरुषार्थ करना है उन्हें और क्या नहीं करना चाहिए, निगेटिविटी को खत्म। और आजकल जो संसार में व्यर्थ का तूफान है, बहुत गंदगी है चारों वाइब्रेशंस में गंदगी है। एक बहुत अच्छी बात सामने आई, एक बॉम्बे में एक बगीचे में एक आम का पेड़, बगीचे वहां गंदे पड़े रहते थे, बहुत गंदे, कोई सफाई करने वाला नहीं, म्युनिसिपैलिटी वाले पैसा दे रहे हैं तो नीचे वाले पैसा खा रहे हैं, न मजदूर जा रहा है न सफाई करने वाला जा रहा है। आम के पेड़ पे 25 साल से आम ही नहीं आए थे। अब वो बगीचा दे दिया गया ब्रह्मा कुमारियों को। अब उन्होंने पहला काम अपना होता है सफाई अभियान, मोदी जी से पहले का ही अभियान अपना तो चला आ रहा है, सफाई की बगीचे की, सब ठीक ठाक किया, रास्ते ठीक किए, उनको बनवाए, थोड़ा अच्छा बड़ा था बगीचा, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा भी नहीं, और फिर वहां सेंटर बना दिया। अब सेंटर के लिए मकान तो वहां बनना अलाउ नहीं होता, बॉम्बे में बहनों ने बहुत अच्छा किया हुआ है, गोल गोल झोंपड़ी ऊपर छत्र छाया होती है जैसे, वो अच्छी अच्छी बना दी है, नीचे फ्लोरिंग कर दी है और वहां क्लास करते हैं, क्योंकि बॉम्बे में क्लासरूम बड़े होते नहीं, चलो रहने के लिए तो दो तीन रूम मिल गए पर क्लासरूम नहीं मिलते। तो बहनों ने वहां योग शुरू किया, कुछ लोगों ने उस पेड़ के नीचे बैठ के भी योग शुरू किया, सफाई हो गई, गंदे लोगों का वहां आना बंद हो गया, और एक ही साल में उस आम पर बहुत ही मीठे आम लग गए पेड़ पर। लोगों को भी आश्चर्य हुआ, ये आम का पेड़ 25 साल से कुछ दे ही नहीं रहा था, ब्रह्मा कुमारियां आई तो फल देने लगा। क्या ब्रह्मा कुमारियां ही फल देती है ना सबको, बहुत अच्छा। ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट, सफाई का इफेक्ट। तो हम भी, सभी माताएं भी अपने घरों में आसपास सफाई भी अच्छा रखें, और यहाँ भी एक एक कमरे में ज्यादा रहती है ना माताएं, सभी सफाई का बहुत ध्यान रखें। माताएं तो सफाई प्रेमी होती हैं, लेकिन अगर कोई सफाई प्रेमी नहीं है तो उससे क्या नहीं करेंगे, झगड़ा, झगड़ा भी नहीं करेंगे और प्यार से सफाई कर देंगे। भाई लोग थोड़ी कम सफाई रखते हैं, आप सब भी सफाई अच्छी रखना अपने अपने कमरों में, तो अच्छे करते हैं ना आजकल भाई, अच्छे सफाई। ठीक कहता है सुशील, आजकल भाई भी सफाई प्रेमी हो गए हैं बहुत ज्यादा, मोदी जी भी तो भाई हैं ना, उन्होंने अभियान चालू कराया है, तो भाइयों पर भी उसका अच्छा असर पड़ गया है। तो एक सुंदर लक्ष्य, व्यर्थ से मुक्त रहने का लक्ष्य, और अपने को इस गंदे निगेटिव वाइब्रेशन से बचाना। देखो ये चारों निगेटिव वाइब्रेशन है ना, इसका प्रभाव प्रकृति पर भी बहुत बुरा होता है, क्योंकि प्रकृति वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर रही है। हम सब मनुष्य आत्माएं तो कोई रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और जिनको ज्ञान है वो तो पूरा ही अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, परंतु प्रकृति तो सब कुछ ग्रहण करती है, इसलिए फलों में रस नहीं रहा। हम पहले एप्पल खाते थे, एक खाके दिल खुश हो जाता था, अभी चार भी खाओ लगेगा कुछ खाया ही नहीं। गाय दूध देती थी, भैंसे दूध पी के लगता था कुछ एनर्जी आ गई, अब तो पीते रहो पानी की तरह होता है या नहीं, पछतावी नहीं है। आम पहले कितने रसीले और स्वीट होते थे, अब उन आमों को ढूंढते ही रह जाते हैं, केमिकल से पकाने पड़ते हैं उन्हें, कोई ना कुछ इंजेक्शन विंजेक्शन लगा के मीठा करना पड़ता है। हाँ होता ही नहीं, टेस्ट नहीं होता। क्यों हुआ ये? क्योंकि मनुष्यों में टेस्ट नहीं रहा ना, उनके निगेटिव वाइब्रेशंस प्रकृति ग्रहण कर रही है और उसका पूरा असर प्रकृति पर जा रहा है। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों को चाहिए, अब क्या करेंगे प्रकृति के लिए? प्रकृति को अच्छे वाइब्रेशंस देना। और एक काम और करना है सभी को, देखिए बड़ी सूक्ष्म गति है, प्रकृति ने हमारी जन्म जन्म पालना की है ना, सच्चे मन से इसको शुक्रिया किया करें। रोज एक बार अन्न दिया इसने हमें, शरीर दिया है, वस्त्र दिए हैं, मकान दिए हैं, फसलें सब जो कुछ भी मिल रहा हो प्रकृति से आ रहा ना, जल दिया, वायु दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रकृति प्रसन्न रहेगी हमसे, ये जड़ चीजें भी प्रसन्न यदि रहती हैं तो हमें भरपूर रखती है। हम ये ना सोचे चेतन आत्माओं में ही प्रसन्नता है, फूलों में भी प्रसन्नता है। फूल जब खिलते हैं तो सबको प्रसन्न कर देते हैं ना, वो प्रसन्न नहीं होंगे तो हमें प्रसन्नता कहाँ से देंगे, ये उनकी एक अनुपम प्रसन्नता है। तो हम इस प्रकृति को भी शुक्रिया किया करें रोज, और दूसरा उनको शुक्रिया किया करें। किनको? जिन्होंने पूरा कल्प हमें कहीं ना कहीं मदद की है, जो हमारे अच्छे फ्रेंड रहे हैं, जिन्होंने हमें सुख दिया है, उन्हें भी सच्चे मन से शुक्रिया करें। आपके फ्रेंड्स की संख्या बढ़ती जाएगी, वो सब फ्रेंड यही होंगे ना, हमारे आसपास ही होंगे, क्योंकि हमारी समीपता बढ़ती है कर्मों के हिसाब से। जो हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, कर्मों का सुंदर लेन देन रहा है, वो अब यहाँ भी वैसे ही फ्रेंड हैं, सुंदर लेन देन है। तो उन सब को सच्चे मन से शुक्रिया किया करें एक बार, और किसी से गड़बड़ हुई हो। अब एक प्रैक्टिकल और छोटी सी बात पे ध्यान दें, और भाई बहने जो ग्रस्त में रहते हैं, अपने परिवार के माहौल को खुशनुमा प्रेम युक्त बनाने के लिए इस चीज पर गौर करें जरा। परिवार में मान लो 10 सदस्य हैं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 सब जगह नहीं होते, पर किसी परिवार में 10 सदस्य हैं। अब वो 10 क्यों इकट्ठे हुए हैं? सबके हिसाब किताब है, कोई लेने आया है, कोई देने आया है, कोई आपसे बहुत फ्रेंडली होंगे मित्रवत, और कोई थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे, नफरत करेंगे। माताएं ऐसा ऐसा अनुभव सुनाती हैं, बच्चे ने जन्म लिया है, अच्छा ही नहीं लग रहा है उसको देखना, ये भी अनुभव हो रहे हैं, जैसे उसको देखते ही कुछ हो रहा है माँ को। क्यों? कड़े हिसाब किताब वाली आत्मा आ गई है घर में, लेने आई है। अब क्योंकि तुमने मुझे सुख से नहीं रहने दिया, मैं भी नहीं रहने दूंगी अब, तो उन सब से क्षमा याचना कर लिया करें, तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी। क्यों भाई घड़ियां अलग अलग टाइम दिखा रही है आज ज्यादा ही, तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी और बहुत अच्छा पुरुषार्थ चलेगा। समझ गए ना? एक मिनट भाई, अपने अपने परिवारों में अगर आपको कहीं ऐसा नजर आए कि इस व्यक्ति से अच्छे नाते नहीं है, मन का नाता भी, माँ बेटे का भी हो सकता है, पति पत्नी का भी हो सकता है, तो उनसे मन ही मन क्षमा याचना करना, और 2-4 दिन प्रैक्टिस करके देखो, उनके लिए अच्छा बोलना, पूर्व जन्मों का खेल चलता आ रहा ना, अब उनके लिए अच्छा बोलेंगे तो उनका मन हल्का हो जाएगा और आपके संबंधों में मधुरता आ जाएगी। ओम शांति। बैठो, हाँ बोलो बोलो, तंग कर रही ना, अभी बैठो, दृष्टि लो और इस आत्मा की मुक्ति करो। मैं समझ गया था। हाँ बैठो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसी स्मृति में बैठो।